ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس عزیزی، پروگرام انداز جہاں لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مصر کے صدارتی انتخابات کے پہلے مرحلے کے نتائج اور مصر کا سیاسی مستقبل. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین، یقیناً آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ 23 اور 24 تاریخ کو مصر کے صدارتی انتخابات ہوئے اور اس میں متعدد فکر نظر کے لوگ کینڈیڈیٹ اور امیدوار تھے، اسلام پسند گروہوں کی طرف سے بھی، مغرب نواز لوگوں کی طرف سے بھی، اور لبرل اور قوم پرست لوگوں کی طرف سے بھی امیدوار میدان میں تھے. اور مصر کے قانون اور آئین کے مطابق اگر پہلے مرحلے میں کوئی بھی امیدوار 50% سے زائد ووٹ حاصل نہ کر سکا تو پھر انتخابات دوسرے مرحلے میں ہوں گے، اور جو دو امیدوار سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے انہی کے درمیان دوسرے دور میں مقابلہ ہوگا. چنانچہ پہلے مرحلے کے جو انتخابات تھے اس میں کسی کو بھی 50% سے زائد یا 50% ووٹ نہیں مل سکا، تو اخوان المسلمین کی سیاسی شاخ یا سیاسی بازو آزادی و انصاف پارٹی کے امیدوار محمد مرسی اور اسی طرح سابق ڈکٹیٹر حسنی مبارک کے آخری وزیر اعظم احمد شفیق نے دیگر تمام امیدواروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے. البتہ یہ دونوں امیدوار بھی 50% ووٹ حاصل کرنے سے باز رہے اور حاصل نہ کر سکے. چنانچہ اب 16 اور 17 جون کو جو دوسرے مرحلے کا الیکشن یا انتخابات ہوں گے ان میں مقابلہ انہی دونوں امیدواروں کے درمیان ہوگا، اور یوں اب مصر کا سیاسی منظرنامہ ایک انتہائی دلچسپ مگر ساتھ ہی انتہائی خطرناک موڑ پر پہنچ گیا ہے، اور لوگوں میں اس بات کو لے کر تشویش پائی جا رہی ہے کہ وہ احمد شفیق جن کے بارے میں مصری عوام راضی ہی نہیں تھے اور کسی بھی قیمت پر اس بات کے لیے تیار ہی نہ تھے کہ چونکہ وہ ڈکٹیٹر حسنی مبارک کے آخری وزیر اعظم تھے لہٰذا وہ میدان میں کھڑے ہوں ان پر تو مقدمہ چلنا چاہیے، تو وہ اتنے زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں کیوں کر کامیاب ہو گئے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی سازش تو نہیں؟ اور بہت سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں. چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ نگار بیرسٹر طاہر واسطی صاحب. واسطی صاحب السلام علیکم.
علیکم السلام.
جی بہت شکریہ واسطی صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ 33 سالہ آمریت کے بعد مصر میں یہ پہلے جمہوری انتخابات تھے، خود نفس عمل پر یعنی جمہوری عمل کی طرف مصری عوام نے جو پہلا قدم اٹھایا ہے، اس صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہوگا؟
شکریہ علی. میرا خیال ہے کہ بہت ہی اچھا عمل ہوا ہے. انتخابات جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ تھے. 33 سالہ تو یہ، لیکن تقریباً 70 سالہ تاریخ میں بہت عرصے بعد لوگ جو ہیں وہ اس جمہوری عمل میں شریک ہو رہے ہیں اور ان کو اپنی رائے کی آزادی کا موقع ملا ہے. یہ مصر کے لیے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا تھا اور ہو سکتا ہے ابھی بھی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور مصری عوام نے اس دن کے لیے اور اس جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، اور انشاءاللہ مصر کا جو انقلاب ہے یہ ضرور زرخیز ہوگا اور ضرور اس سے سر و شاداب ہوگا اور اس پہ جو ہے اچھے نتائج سامنے آئیں گے. یہ آپ کا کہنا بجا ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں فرمایا کہ احمد شفیق کو الیکشن کی اجازت ہی نہیں ملنی چاہیے تھی. احمد شفیق جو ہیں وہ سابق فضائیہ کے افسر رہے ہیں، اس کے بعد وہ حسنی مبارک کی رجیم میں شامل رہے، اور یہ تمام انقلاب حسنی مبارک کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں آیا، یہ تمام انقلاب ڈکٹیٹرشپ کے خلاف اور ڈکٹیٹرشپ میں جو لوگ شامل رہے ہیں ان کے خلاف انقلاب تھا۔ تو احمد شفیق کو اس انقلاب کے آنے کے بعد الیکشن میں لڑنے کی اجازت دینا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس وقت بھی وہاں کی فوج کا اور حسنی مبارک کی چھوڑی ہوئی جو گورنمنٹ ہے اس کے جو لوگ ابھی تک فوج میں اور دوسری بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کس طرح سے حسنی مبارک کی اس رجیم کو کنٹینیو کروا سکتے ہیں
جی.
حسنی مبارک کے ان نظریات کو اور اس پالیسی کو کنٹینیو کروا سکتے ہیں ایک اس انقلاب کے آنے کے باوجود۔ تو یہ اس سازش کے نتیجے میں احمد شفیق کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی، اور میرا خیال ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ پیٹیشنز داخل ہو گئی ہیں، اور اگر ان کا انصاف پر مبنی فیصلہ ہوا تو وہ یہی فیصلہ کریں گی کہ احمد شفیق کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، چونکہ یہ انقلاب اس کرپشن کے خلاف، اس مغرب نواز حکومت کے خلاف اور ان تمام لوگوں کے خلاف آیا ہے جنہوں نے اس حکومت میں بیٹھ کے عوام پر مظالم توڑے، عوام کے خیالات کے اور عوام کے جذبات کے خلاف کام کیے۔ اب اگر احمد شفیق کنٹینیوٹی کر لے کے آتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے خلاف جو ان کے دوست تھے، جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے اے ڈی اور ایبیٹرز تھے، کیا یہ ان کے خلاف کرپشن کی کارروائی کر سکیں گے؟ اسی شخص نے کچھ عرصہ پہلے، میں سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر، آ کر یہ کہا کہ مصر میں انقلاب لانے والے نوجوان کی مثال بدتمیز لڑکوں کی ہے جو اپنے والد کے منہ پر تماچا مارتے ہیں۔ اس شخص کے جس کے اس قسم کے خیالات ہوں انقلاب لانے والوں کے متعلق
جی.
اور جو ان لوگوں کو جو اتنا بڑا انقلاب لے کے آئے، جنہوں نے اتنی بڑی 70 سالہ ڈکٹیٹرشپ کو ختم کیا، جو شخص ان لوگوں کو بدتمیز بچے سے مثال دے، اس لوگوں کو آج مصر کا دوبارہ صدر بنا دینا، اور کیا وہ پھر حسنی مبارک اور اس کے کیے ہوئے اقدامات کو کس طرح سے ابولش کرے گا، اس کرپشن کے خلاف کس طرح سے کام کرے گا جس کرپشن میں اس کے اپنے ہاتھ لتھڑے ہوئے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ احمد شفیق کے بہت چانسز نہیں ہیں کہ وہ آئے، لیکن یہ ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہے مصر کی عوام کے لیے۔ اس کی فوج ایک طرف ہے اور فوج یہ انڈیا دے رہی ہے، اشارے دے رہی ہے کہ اگر اخوان المسلمین کا اور مسلمانوں کی جماعت کا کوئی آدمی آیا اور ہماری کسی نے مدد نہ کی تو ہم اپنی مدد خود کریں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کو سیکولر فورسز اور جو دوسری جماعتیں ہیں وہ کس طرح سے انٹرپریٹ کر رہی ہیں فوجیوں کے ان بیانات کو، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ہماری مدد نہ کی ہم اپنی مدد خود کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تو ہے، یہ بہت آسان بات ہے، لیکن اب ویسٹ کو جو تمام عمر یہ تبلیغ کرتے رہے ہیں جمہوریت کی دوسرے ممالک کو، اور اب اس کو جب پریکٹس کرنے کا وقت آیا ہے تو ویسٹ کو اس کو کشادہ دل سے اور کشادہ سینے سے اس کو قبول کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ڈکٹیٹرشپ کے آخر آ گئی ہے مصر میں، اور احمد شفیق کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے فیوچر پولیٹکس میں، اور جو بھی جمہوری جماعت آئے، جس کو عوام منتخب کریں، انہی کو مصر کی حکومت کی باغ دوڑ دینی چاہیے۔ یہ اس لیے بھی بہتر ہوگا چونکہ فریڈم اینڈ جسٹس پارٹی کی ہی اس وقت پارلیمنٹ میں ایک اکثریت موجود ہے، اگر انہی کا کوئی شخص صدارت کے عہدے پر بھی براجمان ہوتا ہے
جی.
تو اس سے اچھے قوانین پاس ہوں گے، عوام کی رائے اور ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے حکومت خارجہ اور انٹرنل پالیسیز بنائے گی۔
جی واسف صاحب، اگلا سال بھی آپ ہی سے کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا وجوہات رہیں جس کی وجہ سے انقلابی قوتیں پہلے ہی مرحلے میں اپنی پسند کے امیدوار کو کامیاب نہ کرا سکیں، اور دوسرا سوال اسی میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ احمد شفیق جس کا استقبال وہ جہاں جہاں بھی گئے لوگوں نے جوتے چپل اور ان کے خلاف نعروں سے کیا، کیسے اتنا زیادہ ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے؟
شکریہ علی۔ دیکھیے، پہلا سوال آپ کا جو ہے وہ کہ انقلابی قوتیں کس طرح سے اپنے امیدوار کو کامیاب نہ کروا سکیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے سیلنٹ جو ہیں وہ یہ ہیں
جی،
وہ جس کینڈیڈیٹ کو اخوان المسلمین اپنا متفقہ کینڈیڈیٹ بنا کے سامنے لانا چاہ رہے تھے، ان کو حکومت نے نااہل قرار دے دیا کچھ عرصہ پہلے، जब उन्होंने ये कहा कि उनकी जो मिसिज हैं उनकी दोहरी नशरियत शहरियत है और वो अमेरिका की शहरी हैं, और इस वजह से वो तो बेचारे इलेक्शन लड़ने के अहल ना करार दिए जा सके। और इख्वान अल मुस्लिमीन के अपने कैंडिडेट्स में काफ़ी मैं फूट का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसी इख्तलाफात थे जिनकी बुनियाद पर इस तबके के बहुत सारे लोगों ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े और इख्वान अल मुस्लिमीन का बहुत सा वोट जो है वो तकसीम हुआ। तीसरी बात यह है कि मिस्री अवाम इस बात को समझती है और मेरा ख्याल है कि दूसरे तजिया नगार भी शायद इस बात को देख रहे हैं कि लोग थोड़े से खायफ ज़रूर हैं इस बात से कि इख्वान अल मुस्लिमीन के पास कोई तजर्बा नहीं है, इख्वान अल मुस्लिमीन के पास कोई ऐसा कोई मिसाल नहीं है कि ये किस तरह से हुकूमत चलाएंगे, क्योंकि हुकूमत चलाना एक एक बिल्कुल स्पेशलाइज्ड फील्ड है आजकल के दौर में। बहुत सारी पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो जो आजकल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं किसी भी मुल्क में, इख्वान अल मुस्लिमीन के पास इस किस्म के कोई लीडर्स और इस किस्म के कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र्स नहीं हैं, और मगरिब के प्रोपेगेंडे की वजह से लोग इस्लामी कवानीन के राज होने से भी खौफजदा हैं। आपको मालूम है कॉप्टिक जो ईसाई तबका है वहाँ पे और जो माइनॉरिटीज़ हैं वो तमाम भी इस बात की बहुत खायफ हैं, और वेस्ट ने एक बहुत शदीद प्रोपेगेंडा किया कि अगर इख्वान अल मुस्लिमीन जीतते हैं तो ये इस्लामी निज़ाम लेके आएंगे जिससे माइनॉरिटीज़ को और मॉडरेट मुस्लिम जो आजकल नहीं एक इस्तेहा चली है मॉडरेट मुस्लिम्स को और लिबरल्स को और सेकुलर्स को लिमिटेड सिविल राइट्स हासिल होंगे। इस प्रोपेगेंडे का भी बहुत असर हुआ। और तीसरी बात जो है वो ये है कि हकूमती मशीनरी जो है और जो फ़ौज की मशीनरी है इसने भरपूर तौर पर अहमद शफीक का साथ दिया। बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम सामने आए हैं जिसमें फ़ौजियों ने पुलिस ऑफिसर्स ने जो हैं वो वोट डाले हैं एक आम शहरी बनकर, हालांकि वो उनको ऐसा करने का इख्तियार मौजूद नहीं था, उनकी छानबीन हो रही है। तो ये कुछ ऐसी वजूहात तो यकीनन थी कि इनके वोट का डिवाइड हो जाना और इनके मुश्तरका कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त का ना मिलना, ये ऐसी बातें थी जिसकी वजह से इख्वान अल मुस्लिमीन और जो जिनको राइट की कुव्वतें कहा जाता है, आप देख लीजिए राइट की कुव्वतों में मेरा ख्याल है 1, 2, 3, 4, 5 लोग जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे थे और इनका वोट 5 लोगों में जो है वो डिवाइड हुआ, जबकि लेफ्ट के वोट भी डिवाइड हुए। और जो कुछ लोग तजिया कर रहे हैं कि अगर लेफ्ट के तमाम वोट्स को इकट्ठा किया जाए तो ऐसा मुमकिन है कि अहमद शफीक जो हैं वो इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इख्वान अल मुस्लिमीन के पास इस वक्त लोगों के पास उस वक्त जब उनको इजाज़त उनको ये इख्तियार था कि वह अहमद शफीक की जगह और लोगों को लेफ़्ट के लोगों को चुने, उन्होंने ऐसा किया और इख्वान अल मुस्लिमीन को वोट नहीं दिए और इख्वान अल मुस्लिमीन के वोट डिवाइड हुए। लेकिन अब जबकि इख्वान अल मुस्लिमीन का एक कैंडिडेट मुर्सी और अहमद शफीक मद मुकाबिल हैं, तो जैसा कि इस वक्त नारा लग रहा है ऑल बट अहमद शफीक, ये नारा जो है वो प्रीवेल करेगा। मिस्र की आवाम जिसने इतनी जद्दोजहद के बाद इस जमहूरी अमल को आगे बढ़ाया है, डिक्टेटरशिप को धक्का दिया है, 70 साल की डिक्टेटरशिप को ख़त्म किया है, वो उस डिक्टेटरशिप की कंटिन्यूटी में अहमद शफीक को कभी वोट नहीं देंगे। अहमद शफीक ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा और मोहम्मद मुर्सी इस इलेक्शन को लड़ेंगे। हालांकि अहमद शफीक जो हैं वो मोहम्मद मुर्सी पे वही फंडामेंटलिस्ट मुसलमान होने का और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनकलाबी कुव्वतों के फेल होने की वजह या इतने अच्छे तरीके से वोट लेने की वजह जो है वो ये बनी।
बहुत शुक्रिया आपका वासी साहब, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, गालिबन वहाँ पर मौजूद हैं हिंदुस्तान के मुमताज़ दानिश्वर और वेलफेयर पार्टी के सरबराह जनाब कासिम रसूल इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह
जी। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे मिस्र के इंतखाबी नतायज के बारे में? अहमद शफीक जिसके बारे में ये था कि जहां वो जा रहे थे अवाम उनके खिलाफ नारों से उनका इस्तकबाल कर रहे थे, इतना ज़्यादा वोट हासिल करने में क्यों कामयाब हो गए?
नहीं, आप उससे पहले जो वासी साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे वो बहुत अहम है कि पहली बात तो ये कि इस्लामी क़ुव्वतों के वोट तकसीम हुए। ख़ुद आप जानते हैं कि इख्वान के एक दूसरे लीडर अब्दुल मोनिम अब्दुल फत्ता जो है ये खड़े हो गए थे उस वक्त में जब इख़वान ने ये तय किया था कि वो इंतखाबात नहीं लड़ेंगे प्रेसिडेंट के, उस वक्त ये डिक्लेयर हो गए थे और उनको पार्टी से यानी तंजीम से निकाला गया था। वो भी एक कैंडिडेट थे, अच्छा खासा वोट उन तक मुंतकिल हुआ। खुद इस्लामी क़ुव्वतों में जो इख़वान के अलावा जो ग्रुप साथ में आए थे वो भी इसके लिए तैयार नहीं हुए कि वो इख़वान के कैंडिडेट की हिमायत करें, तो ये भी एक वजह रही है। तीसरी वजह यह रही है कि खुद एक मसला ये भी पेश नज़र है इस वक्त में कि सदर जो बनेगा उसके अख्तियारात क्या होंगे, सदर सुप्रीम होगा या पार्लियामेंट सुप्रीम होगी, ये मसला भी तय नहीं है। और अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी जिसको जो है ख़त्म कर दिया गया, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी फिर वो ये कॉन्स्टिट्यूशन तय लिखेगी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद ये तय होगा कि भाई सदर के अख्तियारात क्या होंगे और पार्लियामेंट के अख्तियारात क्या होंगे। तो जाहिर है कि इस वक्त में बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के सदर का इंतखाब हो रहा है, तो हर चीज़ वेग है। इसमें यही वजह है कि हम ये देखते हैं कि खुद इसमें इस इंतखाबात में 50% लोगों ने हिस्सा लिया है। जिस तरह का रवैया और जिस तरह का मुजाहरा आम इंतखाबात के मौके पर हुआ था, जिस बड़े पैमाने पर लोग उसमें निकल कर सामने आए थे, वो सिचुएशन इस वक्त नहीं थी। तो उसकी वजह ये अनसर्टेंटी है, ये गैर यकीनी कैफियत थी जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर ये बात कि खुद फौज ने और मगरिब ने पूरी क़ुव्वत लगाई थी कि इख़वान के लोग मुंतखब ना हो सकें, जिस तरह से पार्लियामेंट पर ये लोग डोमिनेट कर गए हैं इस्लाम पसंद ताकतें, तो सदर जो है इनके हाथ से, सदारत इनके हाथ से निकल जाए, और सदारत इनके हाथ से निकल जाती है तो फौज की और सबकी ये कोशिश है कि सदर को बाख्तियार बना दिया जाए और पार्लियामेंट को जो है उसके मातहत कर दिया जाए। तो जाहिर है कि ये अहमद शफीक के सिलसिले में पूरा यानी वेस्टर्न मीडिया, मगरब और साथ साथ जो है ये फौज को भी, जाहिर है कि ये फौज के सामने भी एक बड़ा सवाल ये है इस वक्त में कि फौज को जो अपर हैंड हासिल था मिस्र में मुख्तलिफ वजूहात के तहत में, अब आने वाले दौर में फौज की पोजीशन क्या होगी। जाहिर है कि पार्लियामेंट में जो कंपोजिशन आया है और अवाम का जो रुझान है वो तो इसके हक में नहीं है कि फौज कोई शहरी मामलात में या मुल्क के मामलात में दखल दे। उसका काम जो है सरहदों की हिफाजत है, उसको सरहदों तक महदूद होना चाहिए जैसा कि दूसरे ममालिक में होता है। फौज का कोई रोल जो है सिविल गवर्नमेंट के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि फौज जिसको 60 साल तक के इकदार में रहने का और इकदार को टॉपल करने का और उसके अंदर अपने अपने यानी मनसूबे के तहत में काम करने का जो मौका हासिल रहा है, वो क्या बआसानी अपने दस्तबरदार हो जाएगी इस सिचुएशन से। तो फौज को की भी पूरी कोशिश थी कि अहमद शफीक जो है इसमें आगे बढ़ें, और जितने मैनिपुलेशंस और जितने गलत तरीके अख्तियार किए जा सकते थे वो सब तरीके अख्तियार किए गए। यही वजह है कि अहमद शफीक जिनके बारे में आपने खास तौर से ये बात कही है कि जहां जाते थे उनका पत्थरों से और जूतों से इस्तकबाल होता था, उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर वोट लाए हैं। तो इसकी वजह साफ है कि एक तो फौज का और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट रहा है, मीडिया का सपोर्ट इस रहा है जो लिबरल मीडिया है, वेस्ट का सपोर्ट रहा है, खुद इसराइल की जो क़ुव्वतें हैं जिनको ये एहसास होने लगा है कि मिस्र से इनको जो ताल्लुक कायम था अब तक के वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो भी इस इलेक्शन में मेरे ख्याल से खासा दिलचस्पी ले रहा था और उसने भी दरपर्दा कोशिशें की होंगी। तो इन सब कोशिशों का मिला जुला ये असर हुआ है कि अहमद शफीक इतने वोट लेने में कामयाब हो गए। लेकिन अब सिचुएशन बहुत क्लियर है, अब लोगों के सामने एक ही सवाल है कि जिन 60 साल के जिस डिक्टेटरशिप को, जिस इस्तकबार को, जिस को इन्होंने शिकस्त दी है, क्या वो तमाम कोशिशें रायगां चली जाएंगी। अगर अहमद शफीक वर्से इकदार आते हैं तो जाहिर बात है कि अहमद शफीक जो है उसी का यानी जो पिछला साबिका हुकूमत रही है उसी का एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है, और इसी तरह से फौज के वो एक तरह से मरहूम रहीन मिन्नत रहेंगे। तो ऐसे शख्स को इकदार में पहुंचा कर अपनी तमाम तर कोशिशों को जो अब तक की उन्होंने की है इनकलाब बर्पा करने की, उसको मलियामेट कर देना, शायद मेरे ख्याल से अब मिस्र के अवाम इतना बड़ा जोखम मोल लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। और जाहिर उनके सामने अगर इन दोनों ही के अंदर मुंतखब करना होगा तो वो लोग भी जो किसी वजह से इख़वान के कैंडिडेट से इस बात का खौफ खा रहे हैं या इस बात से डर रहे हैं कि इस्लाम इस मुल्क का मजहब होगा और इस्लाम ही की बुनियाद पर तमाम चीज़ें फैसले होंगे, हालांकि इख़वान ने अव्वल रोज से ये कोशिश की है कि कॉन्सेंसस डेवलप हो। उन्होंने यहाँ तक कोशिश की थी कि भाई सदारती इंतखाबात में अपने उम्मीदवार को खड़ा करने के बजाय कुछ ऐसे शख्स को लाया जाए जिस पर सबका इत्तेफाक हो सके, और इसकी कोशिश की थी कि भाई एक ऐसी हुकूमत बने जो नेशनल हुकूमत हो जिसमें सबका पार्टिसिपेशन हो। लेकिन जाहिर है कि इस सब चीज़ों को माना नहीं गया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए उसको भी खत्म कर दिया गया। तो जाहिर है कि इन सब चीज़ों के बाद उनको मजबूरन ये फैसला करना पड़ा कि अपना कैंडिडेट उतारें, और फिर जैसा कि खैरात शातिर के बारे में जिस तरह का रवैया सामने आया उसके बाद उनको ये महसूस होने लगा कि भाई जो कुछ अब तक के हमने अचीव किया है यानी ये यहाँ जमहूरियत लाने के लिए जो कुछ हासिल किया है वो सब चीज़ें रायगा जाएंगी अगर हमने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। अब जब उनका कैंडिडेट फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है तो मेरा ख्याल ये है कि उन तमाम लोगों को जो मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, जो मुल्क में चाहते हैं कि भाई जिस रास्ते पे अब हम आगे बढ़ चुके हैं वो रास्ते मजीद आगे बढ़े, तो उनकी जरूरत ये बनेगी कि अगर इन दोनों के दरमियान मुकाबला होता है तो वो अपना वोट मोहम्मद मुर्सी के हक में डालें।
जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल भी आप ही से करना चाहूँगा कि अब जबकि ये बात तय हो चुकी है कि इलेक्शन 16-17 जून को जो होंगे तो दूसरे मरहले के, वो मोहम्मद मुरसी और अहमद शफीक के, यानी एक तरफ इनकलाबी क़ुव्वत है और एक तरफ साबिका डिक्टेटर हुकूमत की बाकियात हैं, ऐसे में इनकलाबी क़ुव्वतों की जो एक मुश्तरका कौंसल है उसने तमाम क़ुव्वतों और ग्रोहों और मिस्री अवाम से अपील की है कि वो अब इस मरहले में मुत्तहिद हो जाएं। मिस्र एक इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पर है, इनकलाब को अगर साहिल अमन व नजात तक पहुँचाना है तो मोहम्मद मुरसी की हमायत का ऐलान करना होगा, और साथ ही इन इनकलाबी क़ुव्वतों ने अख़वानुल मुस्लिमीन से भी कहा है कि वो अपने बाज़ मौक़िफ़ में नरमी और लचक पैदा करें। तो अब इस ऐलान के पेश नज़र आइंदा की सूरत हाल इंतखाबी तनाजुर में किस तरह से देखते हैं?
नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये बात जो इख्वान से लोगों ने कही है, जो तवक्कात उन्होंने इख्वान से लगाई हैं, और ख़ुद इख्वान का जो रवैया है उससे मैं समझता हूँ कि इख्वान ख़ुद ये चाहते हैं कि रिकॉन्सिलेशन हो, सब लोग मिलजुल कर फैसला करें, तमाम लोगों कोशिशों से जो इनकलाब बरपा हुआ वो ज़ाय ना होने पाए, अब हम मज़ीद आगे बढ़ें। मिस्र को जो है हमने डिक्टेटरशिप से निकाला है, उसके अंदर हकीकी जमहूरियत परवान चढ़नी चाहिए, मिस्र में अवाम को ही फैसला करने का इख्तियार हासिल होना चाहिए, अवाम के जो नुमाइंदे हों उन्हीं को वही बाख्तियार होना चाहिए। तो इख्वान तो ख़ुद ये चाहते हैं कि साहब कंसेंसस बनना चाहिए मुख्तलिफ मामलात में। तो जो अंदेशे देखिए, इसमें मेरा अंदाज़ा ये है कि इख्वान के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसमें मगरिब का और मगरिब के मीडिया का खासा बड़ा रोल है, कि इस्लाम को मगरिब ने हमेशा एक भयानक रूप में पेश करने की कोशिश की है। हालांकि इख्वान जिस तरह से यानी इस्लाम जिस तरह से इंसानों के हकूक़ को तहफ़ करता है, जिस तरह से वो डिसेंट को बर्दाश्त करता है, जिस तरह से दूसरे मजहब के मानने वालों को पूरी आज़ादी देता है, ये चीज़ हम यानी इस्लामी दौर हुकूमत के अंदर देखते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा ख़ास तौर से इख्वान के खिलाफ नहीं है, इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है, और मैं समझता हूँ कि इख्वान ने के को जो मशवरा दिया गया है वो इसको कबूल करेंगे, और मेरा अंदाज़ा यही है कि अब आइंदा जो 15-16 तारीख को इंतखाब होगा उसमें जो तमाम क़ुव्वतें हैं जिन्होंने इनकलाब बरपा करने में नुमाया रोल प्ले किया है वो मोहम्मद मुर्सी के हक़ में अपने ओर का इस्तेमाल करेंगे।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। डॉक्टर साहब आप दिल्ली स्टूडियो मौजूद है, चलते हैं कराची पाकिस्तान जहाँ पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ दानिश्वर और सीनियर तहज़ीब-ए-निगार प्रोफेसर शकील सिद्दीकी साहब। सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
सिद्दीकी साहब, बहुत से लोगों का कहना है कि एक मुनज़्ज़म क़यादत का फ़ुक़दान इस बात का बाइस बना कि इनकलाबी क़ुव्वतें अपने एक उम्मीदवार को पहले ही मरहले में 50% से ज़्यादा वोट दिलाने में नाकाम रहीं, आप क्या कहेंगे?
तो मैं अभी आपकी जो गुफ्तगू सुन रहा था उसमें मैं थोड़ा सा एक दो बातों का इजाफा करता हुआ चलूं।
जी,
क्योंकि ये जो इनकलाब और इंतखाब का फिनमिना है इसमें बड़ा जोहरी फर्क है, और वो जोहरी फर्क ये है कि अगर एक कामिल इनकलाब एक लीडरशिप की क़यादत में बरपा होता है और वो कामयाबी से हमकिनार होता है तो फिर इंतखाबात में जिस तरह के मसाइल इस वक्त मिस्र में पेश आ रहे हैं उस तरह के मसाइल पेश नहीं आते। लेकिन ये बात तो एक हकीकत है कि जो बेदारी और इनकलाब मिस्र में रुनमा हुआ उसके इब्तदा में बल्कि दरमियान में भी और आखिर तक महसूस ये हो रहा था कि आवाम की राय तो हो सकती है, सोच और फिक्र तो हो सकती है, लेकिन कोई इनकलाबी क़यादत और इनकलाबी लीडरशिप जो है उस वक्त तक जो है वो मंजर आम पर जो है सामने नहीं आई, या इनकलाबी जमात भी जो है उस तरह से सामने नहीं आई जिस तरह की तवक्को की जा रही थी। अच्छा, अगर आप इसका थोड़ा सा एक यानी करीबी इनकलाब की इनकलाबों की तारीख में देखिए तो एक ईरानी इनकलाब की भी एक हमारे सामने मिसाल है जिसमें इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में जो इनकलाब बरपा हुआ उसमें एक शख्सियत जो है क़यादत जो है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर थी, और उसके बाद जब इनकलाब कामयाबी से हमकिनार हुआ तो फिर इनकलाब यानी जो पोस्ट रिवॉल्यूशन जो इकदाम थे उसमें कोई रुकावटें नहीं रही। लेकिन यहाँ हमें मिस्र में इस तरह की कुछ खला जो है और कुछ कमी जो है वो महसूस हो रही है जिसका मजहर जो है वो सदारती इंतखाबात से पहले इख्वान का मखमसा जो था वो भी सामने आया, और अगरचे के इंतखाबात के नतायज से और मिस्री आवाम के मूड से तो ये बात बिल्कुल वाजह है कि वो किसी भी ऐसी कुव्वत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है जो एक शख्सी आमरियत के पूरे तसलसल को दोबारा जो है वो कायम कर सके। लिहाजा जून के इंतखाबात में इस बात का कवी इम्कान है कि इख्वान जो है वो पहले नंबर पर कामयाबी हासिल कर ले और वो मतलूबा जो दस्तूरी शरायत हैं वो पूरी कर दे। लेकिन ये बात अपनी जगह मैं जाती तौर पर मेरी राय ये है कि जो इनकलाबी जो मिजाज है और जो इनकलाबी एक रूह और एक रवैया है उसमें मिस्र में इसका एक फुकदान जो है वो मौजूद रहा है और उसके असरात को अब महसूस किया गया है। मेरा ख्याल से शायद यही वजह है कि इख्वान जो है वो अब अमलियत पसंदी की तरफ जो है वो गामजन है और उसकी ये अमलियत पसंदी जो है इस बात की तरफ इशारा है कि वो जो है इनकलाबी अमल में जो कसर रह गई है उसको वो इंशाल्लाह ताला पूरा कर सकेगी।
बहुत शुक्रिया आपका, मैं फिर आ जाऊंगा, टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। वासी साहब देखें, ये तय है और ये हकीकत है कि जो ये ताज़ा तरीन इस्लामी बेदारी की लहर इलाके में आई है वो मिस्र, वो ट्यूनिस से शुरू हुई लेकिन मरकज़ मिस्र बना और पूरे खित्ते और पूरे इलाके या यूँ कहा जाए कि पूरी दुनिया की निगाहें मिस्र में रही। हत्ता आप देखें कि अमेरिका और क्या कहते हैं आपके बरतानिया और दीगर जो मगरबी ममालिक वहाँ पर जब ये वॉल स्ट्रीट मुखालिफ तहरीक इस तरह की जो तहरीकें चलीं तो उसमें भी लोगों को ये कहना था कि हम तहरीर स्क्वायर से जो है वो सबक ले रहे हैं और धरना अपना तहरीर स्क्वायर से सबक लेकर दे रहे हैं और अपने कैंप लगा रहे हैं। मकसद ये है कि अरब मुल्कों में जो इस्लामी बेदारी की लहर आई उसका मरकज़ मिस्र बन गया और ख़ुद मिस्र के जो इस वक्त के वज़ीर आज़म हैं मुनसिफ अल जंजूरी, उन्होंने कहा है कि मिस्र के हालात पूरे इलाके पर और मिस्र के आइंदा के आने वाले अयाम जो हैं वो पूरे इलाके पर अपने असरात मुरतब करेंगे। तो क्या इन्हीं असरात के खौफ से कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका, इसराइल और इलाके में अमेरिका नवाज बाज अरब हुकूमतें मिस्र के हालात को अपने हक़ में मोड़ने की कोशिश करें और यही वजह है कि सबाई हमदीन सबाही जो तीसरे नंबर पर आए हैं इस इलेक्शन में, उनका कहना है कि वोटों की गिनती में धांधली हुई है और फिर से वोटों की गिनती कराई जाए।
शुक्रिया। जी हाँ, मैं ये आपका मुख्तसर तो बात का जवाब ये है कि बिल्कुल ऐसा ही है। मगरिब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि मिस्र का इनकलाब और मिस्र की हकूमत, इस्लामी हकूमत का वजूद में आना सिर्फ मिस्र के लिए ही नहीं बल्कि मिस्र के इर्द गिर्द के तमाम लोगों को, हकूमतों को इसके अपनी लपेट में ले सकता है और इस अपने असर में ले सकता है। तो ऐसा तो है और इसी की वजह से मैं अर्ज़ कर रहा था जैसे पहले कि लोगों ने ऐसी कंप्लेंट्स जो हैं वो रजिस्टर करवाई हैं और इलेक्शन कमीशन मेरा ख्याल है उन कंप्लेंट्स पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, आज उस पर प्रोसीजरल कार्रवाई हुई है। और लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे भी बुनियादी बात यह है कि ये भी मिस्री आवाम के मुँह पर एक तमाचे की बात थी कि उन तमाम कुव्वतों को अहमद शफीक के अलावा कोई और लीडर नहीं मिला जिसको वो सामने लेकर आते और कहते कि ये इख्वानुल मुस्लिमीन या उन तमाम जो इस्लामी जमातें, लेफ़्ट की जमातें और लेफ़्ट सेंटर की जमातें हैं वो उनका मुकाबला करेंगे। मेरा ख़्याल है कि ये जो अहमद शफीक की कैंडिडेचर फाइल करने की बात थी ये बहुत ही मुसलमानों के लिए, मिस्र के मुसलमानों के लिए एक उनका तमस्खर उड़ाने की बात थी कि वो उस शख्स को, उस शख्स की हस्ती मुबारक की बाकियात को सामने लाते हैं और मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप इनकलाब ले आएं, आप हकूमत को तब्दील करवा दें, आप तहरीर स्क्वायर पर जो हैं वो लंबे लंबे एहतजाज करें, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो जमहूरियत के रास्ते से भी अपने ही कैंडिडेट को सामने लेकर आएंगे और उसको जितवा देंगे। मेरा यकीन है अली भाई कि किसी सूरत भी
जी
मिस्र की वो आवाम जो इतना बड़ा इनकलाब लेके आई और जैसा कि शकील भाई फरमा रहे थे, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी मेरे ख्याल ये बात की थी कि यकीनन ये बात है कि इनके पास एक लीडर नहीं था और काश उनके पास भी एक ऐसा लीडर होता जैसा कि ईरान के पास था जब इनकलाब आया, लेकिन उस तमाम के बावजूद वो कौम जो इतना बड़ा इनकलाब लेके आई जिसने हुस्नी मुबारक को धक्का दिया और जो हुकूमत को ढांचे को तब्दील करना चाहते हैं, सिर्फ हुकूमत नहीं, हुकूमत जिस तरीके से चलाई गई इतने सालों में, 33 सालों में, जो इस ढांचे को तब्दील करना चाहते हैं वो किसी सूरत भी अहमद शफीक को कबूल नहीं करेंगे। और अगर अहमद शफीक को मगरिब की इन तमाम कुव्वतों ने धांधली से, धांधली तो आप तो वोटों की गिनती की धांधली कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अहमद शफीक को कैंडिडेचर देना ही एक धांधली है। जब ये बात पहले से तय कर दी गई थी कि कोई शख्स जो बाकियात हो, जो हुकूमत में शामिल रहा हो उसने मुबारक का, उसको इलेक्शन में लड़ने की, इलेक्शन में कैंडिडेचर की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इसको इजाज़त का मिलना ही एक धांधली है, उसके बाद वोटों की धांधली की बात होती है। लेकिन मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये धांधली इसलिए नहीं करवाई जा रही कि वो एक अपना कैंडिडेट लेके आना चाहते हैं इस्लामी कुव्वतों के मुकाबले में, बल्कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं उन तमाम ममालिक में जो मिस्र के साथ साथ हैं कि देखें, अगर आप हमारी अपॉइंटेड हुकूमतों को गिराएंगे और जमहूरियत लेके आएंगे तब भी हमारे पास ऐसे ज़राए, ऐसे मीन्स और ऐसे तरीके मौजूद हैं जिनके तरीके से हम उस जमहूरी हुकूमत के नतीजे में भी अपना अपॉइंटेड कैंडिडेट ले आएंगे। मैं समझता हूँ कि मिस्र की अवाम यकीनन डिवाइड हुई पहले, और इख्वानुल मुस्लिमीन का 50% से ज़्यादा जीतने वोट वाला उम्मीदवार सामने नहीं आया, लेकिन मिस्री अवाम जैसा कि कह रही है कि ऑल बट अहमद शफीक, वो किसी सूरत में भी अहमद शफीक को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट और के तौर पर वोट नहीं देंगे और वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकेंगे, चाहे वेस्ट जितना मर्जी जोर लगा ले। यकीनन मोहम्मद मुर्सी जीतेंगे, मैं नहीं समझता कि मोहम्मद मुर्सी के जीतने से शायद कोई बहुत बड़ी बात हो, लेकिन कम अज़ कम मिस्री अवाम ये मैसेज तो इर्द गिर्द के लोगों को दे देंगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक इतना बड़ा इनकलाब लेके आए, इतनी बड़ी, इतनी जानें ज़ाया करें, इतनी मेहनत करें, और उसके बाद आपका एक अपॉइंटेड कैंडिडेट जिसको आप अपॉइंट करें धांधली से और बददियानती से, उसको आप हमारा सदर बना दें और ये मैसेज दे दें तमाम लोगों को कि चाहे आप जो मर्जी कर लें, आदमी हमारे ही हुकूमत करेगा, ऐसा नहीं होगा।
डॉक्टर साहब, बैसर साहब बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। डॉक्टर कासिम रसूल लिया साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी गुफ्तगू में बैसर साहब ने फरमाया और ये खबरें आम भी हैं कि मिस्र के आवाम में इस वक्त इनकलाब, इंतखाबात से पहले भी, इंतखाबी नतज के दौरान भी, और अब जबकि दूसरे मरहले तक इंतखाबात खींच गए, एक तरह का इसतराब पाया जा रहा है। वो वोट तो दे रहे हैं लेकिन उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे वोट सही जगह पर नहीं जा पा रहे हैं। और इस दरमियान फ़ौज का भी ये बयान कि अगर हमारी मदद ना की गई तो हम अपनी मदद आप कर लेंगे, तो क्या अलजायर के इस्लामिक सालवेशन फ्रंट का जो हाल हुआ था मिस्र में, खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है, अगरचे मिस्र में इस वक्त इनकलाबी क़ुव्वतें पूरी तरह से बेदार हैं?
नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि अलजज़ायर वाली कैफियत यहाँ मिस्र में नहीं पैदा होगी। अलजज़ायर के हालात में और आज के हालात में बहुत फ़र्क वाक़ हुआ है, और इस वक्त में जिस तरह से मिस्र के अंदर तहरीर स्क्वायर पर एक मूवमेंट चली और पूरी मिस्र की आवाम उसमें, उसने वो उसमें इन्वॉल्व हुई और उसने जिस तरह से उसने मुबारक के डिक्टेटरशिप को ख़त्म किया, उसके बाद सिर्फ फ़ौज ना चाहे और वो उस पूरे वाक़े को ख़त्म, यानी उस पूरी सूरत हाल को लपेट के रख दे, इसका इम्कान मुझे नज़र नहीं आता है। यकीनन मुश्किलात हैं, और ये बात के मुर्सी, मोहम्मद मुर्सी जो है उनका इंतखाब होने के बाद फ़ौज को बहरहाल ये लगेगा कि जिस तरह उसका अपर हैंड रहा अब तक के वो नहीं रहेगा, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल ये कि फ़ौज को बहरहाल इस बात को समझना चाहिए कि जमहूरियत के अंदर फ़ौज का रोल जो है वो सिर्फ अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत होता है, उसको अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत तक महदूद हो जाना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा मसला है। तो मैं समझता हूँ कि इस सिचुएशन से नबर्दाजमा होने में इख्वान को ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा तदब्बुर का और बहुत ज़्यादा सियासी सूझबूझ और बसीरत का मुजाहरा करना चाहिए कि भाई ये इस वक्त में जो कोशिशें हुई और इन कोशिशों के जो नतायज सामने आए हैं, बिल्कुल आखिरी मरहले पर वो सब चीज़ें जो है यानी ख़त्म ना होकर रह जाएं, इसके लिए खासी हिकमत के साथ में, और जैसा कि वो कर रहे हैं, हम ये खुद महसूस कर रहे हैं कि इख्वान ने बहुत फूंक फूंक कर इस इंतखाबी अमल में कदम रखा है। ये बात जो पहले शकील साहब कह रहे थे और वासिफ साहब ने भी कही है कि लीडरशिप का फुकदान रहा इख्वान के साथ में, लेकिन आपको पूरे सिनेरियो को देखना चाहिए कि इख्वान को किस तरह से क्रश करने की कोशिश की गई है, उनके कितने टॉप किस्म के लीडरशिप को जो है शहीद किया गया, हसन बन्ना शहीद किए गए, फिर उसके बाद सईद कुतुब शहीद किए गए, और उसके बाद कितनी पाबंदियों के दौर से इख्वान के लोग गुजरे हैं। पिछले इंतखाबात तक भी ये कैफियत थी कि वो पार्टी की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे और वो इंडिपेंडेंट के आज़ादाना तौर पर इंतखाबात में, यानी आज़ाद नुमाइंदों के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लिया, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अब जब उन्होंने ये महसूस किया कि अखवान के नाम से ये सूरत हाल रही, तो अब उन्होंने जाके एक नई पार्टी बनाई और उसके बाद मैदान में उतरे हैं। तो जाहिर बात है कि अखवान खुद इस बात को रियलाइज करते हैं कि किन हालात से हम गुजर कर आए हैं। तो वो जो उनके यहाँ एक तजद्दुद की कैफियत थी, उसके पीछे उसका वो माजी भी है, पिछला पस मंजर भी है कि इन हालात से वो गुजरे हैं। और चूंकि मिस्र का माशरा जो है वो पूरी तरह से इस्लाम पसंद माशरा नहीं बन पाया है, उसमें बहुत सारी और कुवतें कारफरमा हैं, तो वो महसूस करते थे कि अगर हम कोई ऐसा मैसेज दें कि हम पहले ही दिन से जो है यहाँ इस्लाम को नाफिज कर देंगे, और तो जाहिर है कि वो इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि हम बहुत ओपनली सामने ना आए। पहले उनकी कोशिश ये थी कि हम एक मखलूत हुकूमत बने और हम उसका एक पार्ट बने, ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन इंतखाब के नतायज बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत के सामने आए। उसके पहले उन्होंने ये फैसला किया कि हमारा कैंडिडेट नहीं होगा सदारती, उसके बाद उन्होंने फैसला किया हमारा सदारती कैंडिडेट होगा। तो ये जो तजब्दुब उनके यहाँ पाया जाता है उसके पीछे एक साबिका पस मंजर है जिसको सामने रखना चाहिए। लेकिन मेरे हाल अब इस वक्त में बहुत ही डिसिसिव पोजीशन पे मिस्र के लोग खड़े हैं। एक दो राह है, उनमें से उनको मुंतखब करना है कि इनकलाब के अमल को आगे बढ़ाना है या उसको यहीं रोक देना है। तो मैं समझता हूँ कि मिस्र के अवाम की सूझबूझ और उनका जो बसीरत है वो काम आएगी, और इस वक्त वो फैसला इस बात का ही करेंगे कि मोहम्मद मुर्सी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें।
जी बहुत शुक्रिया, मैं भी हाजिर हूँगा। डॉक्टर प्रोफेसर शकील सिद्दीकी साहब अहमद शफीक जो दूसरे नंबर पर आए हैं, उन्होंने इंतखाबी नतायज या वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद ये कहा है कि हम मिस्र को हुस्नी मुबारक के दौर हुकूमत जैसे दौर में किसी भी कीमत पर नहीं पलटने देंगे। क्या उन्होंने इस बात को भांप लिया है और इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि पूरी मिस्री कौम मगरिब की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ है, इसराइल से मिस्र की दोस्ती के ख़िलाफ़ है? और क्या फ़र्ज़ कर लिया जाए अगर अहमद शफीक कामयाब हो जाते हैं तो इसराइल से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लेंगे, मगरिब पर और अमेरिका पर अपना इन्हिसार कम कर सकेंगे?
नहीं, मेरे ख्याल से तो ये अहमद शफीक का एक सियासी और इंतखाबी अरबा है जिसका उसने इजहार किया है कि वो कामयाबी हासिल करने के लिए इस तरह के बयान दे और मिस्री अवाम को गुमराह करने की कोशिश करे कि जो शख्स जो है वो हुस्नी मुबारक और इस्तेमाली ताकतों के पूरे निज़ाम का हिस्सा रहा है उससे तो ये तवक्को रखना अबस है और ये एक उसकी चाल है। मैं नहीं समझता कि अहमद शफीक की ये कोई सिंसियर अपील है या उसका कोई सिंसियर जो है उसका मौकफ है। ये एक स्ट्रेटेजिकली जो है उसने पॉलिटिक्स इस्तेमाल की है। लेकिन मैं ये बात अलबत्ता ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जो है मिस्र के जो इंतखाबात हैं, सदारती इंतखाबात हैं, उसमें जो यानी पूरा सिनेरियो रीजन का और जो इस्तेमाली कुव्वतों का पूरा एक नुक्ता नज़र है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब पूरी ये कोशिश और पूरी जद्दोजहद यही है कि अगर बिलफर्ज हुस्नी मुबारक चला भी गया है और इस्लाम पसंद मिस्र में कामयाब भी हो गए हैं तो उनको इतना मजबूत नहीं होना चाहिए कि वो इस्तेमार के मुकाबले में खासतौर पर खत्ते में इसराइल और उन अमरीकी अरब निजाद जो हुकूमतें हैं उनके लिए कोई खतरा बन सके। तो ये कोशिश तो बहरहाल होगी और हो रही है कि किसी तरह से जो अखवान की हुकूमत है और अखवान का जो इनकलाब है, वहाँ की जो पूरी इस वक्त की सियासी सूरत हाल है उसको डिस्टेबलाइज किया जाए, और डिस्टेबलाइज करने में उन्होंने ये पूरा चांस लिया है, मौका लिया है कि किसी तरह से सदारती इंतखाब में जो है वो इख्वानुल मुस्लिमीन पर डेंट लगाया जाए। लेकिन देखिए ये जो इनकलाब है इसकी एक और फितरत ये है कि जब तक ये अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुँचता है उस वक्त तक जो है इसका सिलसिला जारी रहता है। चुनांचे ये है कि अगर कोई ये समझता है कि अहमद शफीक को वो कामयाब करा के चाहे वो ओबामा साहब हो या यहाँ पर इसराइल हो या जो अरब के बादशाह हैं वो ये समझते हैं कि वो यहाँ पर जो है वो अहमद शफीक को कामयाब करा के इख्वान की सियासी जो इस्तेहकाम है उसको कोई नुकसान पहुंचा सकेंगे तो ये उनकी भूल है, क्योंकि अभी जो बेदारी की कैफियत है वो किसी भी तरह से कम नहीं हुई है।
सिद्दीकी साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सिद्दीकी साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि मुमकिन तौर पर अमेरिका इसराइल और इलाके में उसकी बाज़ अरब हुकूमतें अहमद शफीक को यानी अपने मर्जी और अपनी पसंद के उम्मीदवार को جتانے میں کس حد تک آگے جا سکتی ہیں، اور دوسری طرف مصر کے عوام، انقلابی قوتیں، اسلام پسند گروہ کیا کر سکتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے اس وقت تو بہرحال یہ دونوں کیفیتیں مجھے جو ہے وہ اس وقت کی سیاست کے اندر بین السطور نظر آ رہی ہیں، میں اس کو محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے صدارتی انتخاب جس میں جو ہے استعماری قوتیں اپنے بحالی کے لیے، اپنے ریوائیول کے لیے ایک سر توڑ کوشش کر رہی ہیں، اس میں اسرائیل بھی شامل ہے اور اسرائیل کے ساتھ وہ عرب بادشاہتیں بھی شامل ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ کہیں ان کی بادشاہتوں کو اور ان کے تخت و تاج کو بھی جو ہے اس سے خطرہ نہ ہو جائے۔ دیکھیے میں اس طرح اشارہ کرتا چلوں کہ پچھلے دنوں جو مصر اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تنازع پیدا ہوا، اگرچہ کہ وہ سیٹل ہو گیا ہے لیکن جس کلائمیکس پہ پہنچا ہے اس کے کانسیکوینسز کو آپ یکسر نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر ہے میرا یہ ذاتی طور پر، کسی کو اور نقطہ نظر ہو سکتا ہے لیکن نہ ہو، لیکن میں آپ سے یہ بات کہوں کہ انقلاب کا جو ایک فینامینا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کہ وہ اپنے منطقی انجام، اپنی کامیابی کی منزل مراد تک نہیں پہنچتا ہے اس وقت تک وہ انقلابی مرحلہ ختم نہیں ہوتا۔ لہذا اگر اسرائیل، امریکہ اور اس کی ہمنوا قوتیں، استعماری قوتیں مصر کے اندر اخوان کی جو اصل اسلامی اسپرٹ، اسلامی حکومت ہے اس کو دبانے کی کوشش کریں گی، تو مصر کے عوام کی جو کیفیت ہے اور مصر کے عوام نے اپنی کیفیت کا جس طرح سے برملا اظہار ایک ڈیڑھ سال کے اندر، دو سال کے اندر کیا ہے، اس کو وہ دبا نہیں سکتے ہیں۔ یہ انقلاب اپنے منطقی انجام کو بہرحال کامیاب ہوگا، یہ میرا ایک ذاتی نقطہ نظر ہے اس وقت۔
بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں پروفیسر شکیل صدیق صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم بچا، ہمارے ساتھی بتائیں گے، غالباً ایک سے ڈیڑھ منٹ وقت بچا، تین منٹ، بہرحال ڈیڑھ دو منٹ کا وقت ہے، تو ایک منٹ میں بھی لوں گا آخر میں۔ واسطے صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مصر میں احمد یا محمد مرسی کی کامیابی یا احمد شفیق کی کامیابی کیا اثرات مرتب کرے گی علاقے کی صورتحال پر، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت یعنی دونوں قوتوں نے اپنا سارا دم خم لگا دیا ہے، یعنی اسلام پسند انقلابی قوتوں نے اور ادھر مغرب نماز قوتوں نے؟
میں شکریہ، احمد شفیق کی کامیابی تو کنٹینیوشن ہوگی حسنی مبارک کی پالیسیز کی، اور یہی ہے جو اسرائیل چاہتا ہے، یہی ہے جو امریکہ چاہتا ہے، یہی ہے جو یورپ چاہتا ہے، اور یہی ہے جو آس پاس کے عرب کے ممالک چاہتے ہیں۔ اور اس کے خلاف ایک انقلاب آیا ہے، اور اس انقلاب کے نتیجے میں محمد مرسی جو ہیں وہ اب نئے صدر بنیں گے، اور محمد مرسی کے صدر کے بننے کے بعد عوام کی امنگوں کے ترجمان حکومت کے بننے کے بعد نہ صرف یہ کہ ایجپٹ میں اچھے قوانین اور نیا آئین بنے گا، چونکہ محمد مرسی صدر بھی ہوں گے اور انہی کی پارٹی کی پارلیمنٹ میں بھی ایک اکثریت موجود ہے، تو اچھے قوانین عمل میں آئیں گے، اور یہ ایک میسج جائے گا ارد گرد کی حکومتوں کو اور امریکہ کو کہ انہیں عوام مخالف حکومتوں کی مخالفت چھوڑ کے عوام کی حمایت حاصل جن قوتوں کو ہے ان کی حمایت کرنی چاہیے اور ان کی بات پر کان دھرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ عوام مخالف ایک ڈکٹیٹر کو اپوائنٹ کریں اور اسی کی بات سنیں اور یہ کہیں کہ یہ عوام کا ترجمان ہے۔
بہت شکریہ واسطے صاحب،
عوام کے امنگوں کا ترجمان ہے۔
بہت شکریہ واسطے صاحب، ڈاکٹر قاسم رسول الیاس صاحب سے ہم معذرت خواہ ہیں۔ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو سنی۔ اس وقت مصر انتخاب کے دو راہے پر کھڑا ہے، احمد شفیق اور ان کے مقابلے زیادہ مقبول محمد مرسی، اور دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ 16 اور 17 جون کو فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ یقینی طور پر پورے عالم اسلام کی، اقوام کی تو خواہش یہی ہے کہ جیسے بھی ہو ان کی جو تحریک اسلامی بیداری کی شروع ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے، اور اس وقت مصر بہرحال موجودہ صورتحال میں مرکز بنا ہوا ہے، سب کی توجہ کی جو ہے وہ توجہ اسی کی جانب ہے، اور جب عوام چاہیں گے اور انقلابی قوتیں چاہیں گی تو ظاہر ہے کہ مغرب اور سامراجی قوتیں لاکھ چاہیں ان کی مرضی کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گی، اگرچہ اس مرحلے کے یعنی پہلے مرحلے کے انتخابات میں انہوں نے پوری کوشش کر دی اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ احمد شفیق کہیں نہ کہیں دوسرے مرحلے تک پہنچ جائیں، لیکن جب فیصلہ کن مرحلہ آئے گا تو واضح فرق سامنے آ جائے گا کہ عوام کی قوت کیا ہوتی ہے اور آمریت اور استعماری قوتیں کیا ہوتی ہیں۔ بہرحال اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔